केशव सिंघानिया इस वक्त गाड़ी में था। अरमान की बातों से उसे एहसास हुआ कि अगर तरुण की पत्नी इशिका है तो ज़रूर अभिमन्यु उसी के पीछे दिल्ली आया होगा। ज़रूर अभिमन्यु इस सच को जानता होगा कि इशिका जिंदा है, वरना अभिमन्यु जैसा शख्स किसी के झुकने से नहीं झुकने वाला था। बाकी सबको यही लगता था कि अभिमन्यु अपनी फैमिली से प्रेशराइज होकर दिल्ली में बिजनेस करने के लिए आया है, लेकिन सच क्या था वो केशव समझ चुके थे। केशव इस वक्त गाड़ी में अभिमन्यु के घर जाने के लिए निकल रहे थे। कुछ ही देर में वो उसे घर में पहुंच चुके थे जहां पर अभिमन्यु रुका हुआ था। गाड़ी से बाहर निकलते ही केशव जब अंदर जाने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। वहां की सिक्योरिटी भी राजवंश विला की जितनी ही टाइट थी। पृथ्वी सिक्योरिटी को देख रहा था। जब उसे पता चला कि केशव सिंघानिया वहां पर आए हैं तो उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी से ऐसे अचानक मिलने पहुंच जाए, क्या लगता है वो यहाँ क्यों आए होंगे? शायद उन्हें इशिका पर डाउट हो गया होगा। इशिका ने मुझे बताया था कि जब उसने मिसेस सिंघानिया को आदर्श सिंघानिया से बचाया था तब उन्हीं की हेल्प ली थी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसे केशव के वहां आने का कारण जल्द ही समझ आ गया था। पृथ्वी कुछ पल रुका और बोला, तो उन्हें हम पर शक हो गया है, ऐसे में हमें उन्हें यहाँ आने देना चाहिए। वो बाहर वेट कर रहे हैं, मैं ज्यादा देर उन्हें वहां रोक भी नहीं सकता। हम ही बाहर चलते हैं, कहीं गलती से भी नक्श ने हमारी बात सुन ली तो प्रॉब्लम हो सकती है, अभिमन्यु ने कहा और फिर पृथ्वी के साथ बाहर जाने लगा। उधर सिक्योरिटी गार्ड ने केशव को अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। वो गार्डन में बने सीटिंग एरिया में बैठे हुए थे। अभिमन्यु पूरे कॉन्फिडेंस से केशव की तरफ बढ़ रहा था। पृथ्वी उनसे कुछ कदम दूर खड़ा हो गया। अभिमन्यु को अपनी तरफ आते देखकर केशव अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो अभिमन्यु राजवंश, तुम्हें मुझे सच बताना ही होगा, अभिमन्यु केशव के पास पहुंचकर बोला। आजकल आपको मेरी कुछ ज्यादा ही याद नहीं सता रही, बार बार गोवा में मुझसे मिलने के लिए आना और अब तो आपने दिल्ली को भी नहीं छोड़ा। हाँ, तुम्हारी हरकतें मुझे मजबूर कर देती हैं अभिमन्यु राजवंश, पत्नी को मरे हुए ठीक से एक हफ्ता भी नहीं बीता और फैमिली वालों की बात मानकर बिजनेस करने के लिए दिल्ली आ गए। तुम्हारे चेहरे को देखकर लग नहीं रहा कि एक हफ्ते पहले तुमने अपनी पत्नी को खोया है, प्यार नहीं था क्या उससे? केशव ने अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए पूछा। वो सीधे ना पूछकर बातों ही बातों में अभिमन्यु से सच उगलवाना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कुछ पल रुककर कहा, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए मिस्टर सिंघानिया, मेरे मेंटोर होने के नाते आपने मुझे यही सिखाया था, मेरी सीख काफी अच्छे से ली है तुमने, केशव ने सिर हिलाकर कहा। चलो अच्छा हुआ तुम मूव ऑन कर रहे हो, अगर आगे बढ़ भी रहे हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने हल्के सख्त अंदाज में कहा। अब तुम मेरे साथ रूढ़ हो रहे हो, हमेशा मेरी बात मानी है तो आज पीछे क्यों हट रहे हो, यकीन मानो तुम्हारी मदद करूंगा, केशव ने जवाब दिया। अभिमन्यु और केशव के रिश्ते से बाकी लोग वाकिफ नहीं थे। अभिमन्यु जब लंदन में स्टडी करता था तब केशव भी कुछ वक्त के लिए वहीं पर सेटल थे। इस बीच उनकी मुलाकात हुई थी, तब से अभिमन्यु ने केशव को अपना मेंटोर बना लिया था। उन्हीं के कहने पर वो पहली बार राजवंश विला में मिसेस सिंघानिया से मिलने गया, जहां उसकी मुलाकात इशिका से हुई थी। अभिमन्यु अपने दिल की बात आसानी से किसी को बताता नहीं था। दूसरी तरफ वो केशव की बात भी नहीं टालता था। बस यही सोचकर केशव ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है बताइए, अगर आपकी बात मानने लायक हुई तो जरूर मानूंगा। केशव ने अभिमन्यु की तरफ देखकर नरम लहजे में कहा, दिल्ली में बिजनेस करने आए हो तो सिंघानिया एम्पायर्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, अब तो मित्तल फैमिली के साथ भी तुम्हारे रिलेशन अच्छे हो गए हैं, मिसेज मित्तल तुम्हारी, केशव अपनी बात पूरी करते उससे पहले अभिमन्यु ने उनकी बात काटते हुए कहा, उस फैमिली से मेरे बिजनेस रिलेशन होने के अलावा और कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे बीच में मत लेकर आइए, बाकी मुझे किसी के साथ में कोई भी प्रोजेक्ट करना होगा तो मैं कभी पर्सनल फेवर कभी नहीं लेता हूँ, ये बात आप अच्छे से जानते हो, ठीक है बिजनेस को जाने देते हैं, आगे बढ़ रहे हो तो पूरी तरह से आगे बढ़ो ना, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मेरे घर के दामाद बनो, तुम्हारी पत्नी काफी अच्छी थी और तुम उसे बहुत प्यार भी करते थे, पर अब वो जा चुकी है, तुम्हें पता है ना मैंने एक लड़की को अडॉप्ट कर रखा है, तुम समायरा से शादी कर लो। अभिमन्यु, केशव ने अपनी पूरी बात अभिमन्यु के सामने रख दी थी। वो देखना चाहते थे कि अभिमन्यु का क्या रिस्पॉन्स होने वाला था। अगर इशिका जिंदा होती तो अभिमन्यु इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होने वाला था। दूसरी शादी की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव गहरे हो गए थे। उसने सर्द आवाज में कहा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी उल्टी सीधी बात मेरे सामने रख देंगे, मेरी वाइफ की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं, ये आखिरी बार होगा मिस्टर सिंघानिया जब मैं आपके मुंह से ऐसी बात सुन रहा हूँ, प्लीज आप मेरे इमोशंस को हर्ट मत कीजिए, इस काम के लिए वैसे भी और लोग हैं, मैं पृथ्वी से आपके लिए कॉफी भिजवा रहा हूँ, उम्मीद है अगली बार कभी मिले तो आप फिर से मेरे सामने ऐसी बात नहीं करेंगे। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जाने को हुआ, तभी केशव ने पीछे से तेज आवाज में कहा, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि अपनी पत्नी के होते हुए किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, जिंदा है ना वो? अभिमन्यु का चेहरा दूसरी तरफ था, इस वजह से केशव उसके एक्सप्रेशंस को देख नहीं पा रहे थे। केशव की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए थे।
अभिमन्यु उनकी तरफ पलटा और खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे क्लियरली बताएंगे कि आखिर आप यहाँ किस बारे में बात करने के लिए आए हैं? अभिमन्यु वापस केशव के पास आ गया था। उसने एक नज़र इधर उधर देखा। दूर दूर तक उसके और केशव के अलावा और कोई नहीं था। बस कुछ दूरी पर पृथ्वी खड़ा हुआ था, जिसे सच का पता था। अभिमन्यु को इधर उधर देखता पाकर केशव ने कहा, तुम्हें डर लग रहा है कि ये सच बाहर न आ जाए? वो जिंदा है। अभिमन्यु ने उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आखिर आप चाहते क्या है? सच जानना और कुछ नहीं। केशव ने कंधे उचकाकर कहा, इशिका का राज बहुत बड़ा था। अभिमन्यु किसी को भी बात कर रिस्क नहीं ले सकता था। वो केशव पर यकीन करता था, लेकिन इतना भी नहीं कि इशिका के जिंदा होने का सच उन्हें बता दे। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, मेरे लिए भी ये मानना बहुत मुश्किल है, पर वो इस दुनिया में नहीं रही। पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन 3 से 4 बार डेड बॉडी का मिसेस सिंघानिया के साथ डीएनए मैच किया गया था और हर बार टेस्ट पॉजिटिव आया था। बोलते हुए अभिमन्यु ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे उसे ये बोलते हुए कितनी तकलीफ हो रही है। उसके शब्द भारी होने लगे थे। केशव भी एक पल के लिए चुप हो गए थे। डीएनए रिपोर्ट उन्होंने खुद देखी थी और वो झूठ नहीं कह रही थी। अचानक केशव की आंखें हल्की नम होने लगी। उसने अभिमन्यु से कहा, पर ऐसा लगता है वो जिंदा है। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं सिंघानिया हाउस में एक लड़की से मिला था। वो अपने आप को इशिका की फ्रेंड बता रही थी, पर महसूस हुआ कि वो लड़की वही थी और उसी ने राधिका को बचाया था। वो जिस तरह से राधिका को प्रोटेक्ट कर रही थी, आदर्श की गलतियों पर उसे सजा दे रही थी, मुझे यही लगा कि वो इशिका है। क्या आपने उसका चेहरा देखा? अभिमन्यु ने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा। वो ये सब इशिका की सिक्योरिटी के लिए ही कर रहा था।
केशव ने उदास चेहरे के साथ ना में सिर हिला दिया था। ये देखकर अभिमन्यु ने राहत की सांस ली। उसने केशव से आगे कहा, मैं भी उस लड़की से मिला हूँ। उसका नाम ईशानी है, ईशानी मर्चेंट। आपको गलत फहमी हुई है, प्लीज इस बारे में किसी से मत कहिएगा, वरना बेवजह मेरी तरह सबको झूठी उम्मीद हो जाएगी कि इशिका जिंदा है। केशव को अब बुरा लग रहा था कि उन्होंने जाने अनजाने अभिमन्यु को हर्ट कर दिया था। उन्होंने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखा और सहलाते हुए कहा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं मिस्टर सिंघानिया, आप कुछ लेना चाहें तो पृथ्वी को बोल दीजिएगा, अभिमन्यु बोला और वहां से जाने लगा। जाते हुए उसने मन ही मन कहा, थैंक गॉड मिस्टर सिंघानिया ने डायरेक्ट आकर मुझसे बात की है, वरना अगर किसी और से कुछ कहा होता तो ईशिका के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। शुक्र है उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा। ईशिका, तुम अपने इमोशंस में इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? अभिमन्यु के जाने के बाद केशव भी वहां से नहीं रुके और वहां से जाने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिमन्यु खुद नहीं जानता कि उसकी पत्नी जिंदा है? मुझे ईशानी से मिलना चाहिए, यहां वो खुद को मास्क में नहीं छुपा कर रखती होगी। अगर इस बार उसने मास्क लगाया भी होगा तो मैं उसे हटाने को बोल दूंगा। केशव ने भले ही अभिमन्यु के सामने जाहिर न किया हो, लेकिन उन्हें शक हो गया था, तो वो बिना सच का पता लगाए पीछे भी नहीं हटना चाहते थे। एक अनजान आइलैंड पर एक चॉपर आकर रुका। सामने एक बड़ा सा पैलेस जैसा घर था, जिसके छत पर चॉपर लैंड हुआ था। वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट थी और आसपास के गार्ड्स गन्स के साथ में खड़े हुए थे। इतनी सिक्योरिटी के बीच चॉपर के अंदर से राधिका और श्रुति उतर रहे थे। राधिका के चेहरे पर गहरे डर के भाव थे और उसने श्रुति का हाथ कसकर पकड़ रखा था। राधिका ने बिल्कुल धीमी आवाज में श्रुति से कहा, हम कहाँ आ गए हैं? मुझे डर लग रहा है, कहीं कहीं हम वापस उनके बीच तो नहीं आ गए हैं ना श्रुति? यकीन रखो राधिका, ये वो लोग नहीं होंगे। अगर वो होते तो अब तक कब का आदर्श को मारकर तुम्हें यहाँ वापस ला चुके होते, श्रुति ने कांपती आवाज में कहा। श्रुति राधिका के साथ हमेशा से थी और उसके स्कूल टाइम से, तभी वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो दोनों घबराते हुए काफी सारे गार्ड्स के बीच गन पॉइंट पर आगे चल रही थीं। तभी सामने मौजूद शख्स को देखकर उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। चलो जी, राधिका भी आ गई है स्टोरी में, देखते हैं कहाँ पहुंची है और कौन है वो लोग जिन्होंने इन दोनों को यहाँ पर लाया है। पढ़कर वेटिंग कर दीजिएगा और प्लीज थोड़े कॉमेंट किया करो यार, इतनी भी क्या कंजूसी दिखाना।